हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। योग जल्द से जल्द तीसरा पड़ाव पार करना चाहता था, इसलिए उसने कृषा को उसके लिए तैयार रहने के लिए कहा। उसके हिसाब से सिंघानिया फैमिली का ध्यान अभी भी दूसरे पड़ाव को खोने में अटका हुआ था। ये सही मौका था जब वो कृषा के साथ जाकर अगला पड़ाव पार कर सकता था। योग और कृषा अपने फ्लोर पर थे, जहां कृषा ने योग को ट्रेनिंग सही से करने का वादा किया। योग भी कृषा के कॉर्पोरेट करने से खुश था, इसलिए उसने पहली बार उसे पड़ाव को पार करने से पहले जो मीटिंग होती थी उसमें आने के लिए कहा। मीटिंग का नाम सुनकर कृषा ने हैरानी से कहा, क्या तुम लोग मीटिंग भी रखते हो? किसी भी पड़ाव को पार करने से पहले प्लानिंग करके जाते हो क्या? कृषा का सवाल काफी बेतुका था। योग ने आईज रोल करके जवाब में कहा, ऑफ कोर्स, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से ही होता है। बिना प्लान किए ऐसे ही थोड़े ना कहीं पर भी मुंह उठाकर चले जाते हैं। प्लानिंग होती है, बैकअप रेडी किया जाता है। हर एक रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। फिर तो मैं भी इस मीटिंग में जरूर आना चाहूंगी। अगर मैं कोई एडवाइस दूं तो क्या तुम लोग उसे फॉलो करोगे? कृषा ने पूछा। अगर एडवाइस अच्छी हुई और फॉलो करने लायक भी तो जरूर करेंगे। चलो अब बातें बनाना बंद करो और सारा के पास जाओ, मुझे कोई बहाने नहीं सुनने हैं। तुमने प्रॉमिस किया है तो सब कुछ अच्छे से करोगी, योग ने जवाब दिया। कृषा को भेजने से पहले उसने उसे गले लगाया। हग करने के बाद योग कृषा से अलग हो रहा था, लेकिन कृषा ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मेरे अंदर क्या कांटे लगे हुए हैं जो जब देखो तुम मुझसे दूर होने का सोचते रहते हो? तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ, वरना मुझे क्या? मैं तो तुम्हें पूरे दिन यूं ही बेड पर लेकर लेटा रहूंगा, लेकिन फिर वहाँ सिर्फ हग नहीं होगा और भी बहुत कुछ होगा। एक बार फिर सोच लो, मेरा काम नहीं रुकेगा पर तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी, योग ने कृषा को तंग करते हुए कहा। उसकी बात का मतलब समझते ही कृषा जल्दी से उससे दूर हो गई। कृषा ने मुंह बनाते हुए योग की तरफ देखकर कहा, हाँ समझ गई तुम्हारी बातों का मतलब, अब जा रही हूँ। योग को बाय बोलने के बाद कृषा वापस नीचे चली गई थी। वहीं कृषा के जाते ही योग ने वो पेपर निकाला जिसके अंदर कृषा ने सारा के सवालों के जवाब लिखे थे। योग ने वो पेपर निकाला ही था कि तभी उसके पास सारा का कॉल आया। योग के कॉल रिसीव करते ही सारा ने धीमी आवाज में कहा, उस पेपर को गौर से पढ़ना, सच कहूँ तो मिस्टर राणा ने बीच में आकर सारा मामला बिगाड़ दिया। मैंने उसमें जानबूझकर ऐसे सवाल लिखे थे जिससे पता चल सके कि कृषा को अपनी बीती जिंदगी के बारे में क्या याद है। उन्होंने पुरानी बातें छेड़ दी और फिर सब गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा, तुम अभी कॉल डिस्कनेक्ट करो, कृषा नीचे आ रही है और उसे ट्रेनिंग करवाओ, युग ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। अब तो वो पेपर पढ़ने के लिए थोड़ा एक्साइटेड हो रहा था। योग उस पेपर के साथ रिलैक्सिंग चेयर पर आकर बैठ गया और उसे पढ़ने लगा। उसमें पहला सवाल ये था कि अपने बचपन के बारे में बताओ या कोई अच्छी याद के बारे में। कृषा ने जवाब में लिखा था, मुझे अपने बचपन से रिलेटेड कोई बात याद नहीं है। मेरी अर्ली स्कूलिंग साला के साथ घर पर हुई थी। हाई स्कूल के लिए भाई मुझे श्रीलंका ले गए और उसके बाद मैं वहीं पर रही थी। कभी कभी सपनों में कुछ चीज दिखाई देती है, जैसे मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, कोई मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। एक औरत है जिसकी धुंधली सी तस्वीर है जो मुझे अपने आंचल में लेकर बैठी है ताकि मुझे उन सब से बचा सके। पहले सवाल का जवाब पढ़ते ही युग ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, इसका मतलब यादें धुंधली हुई हैं, हमेशा के लिए मिटी नहीं है। वो जिस औरत का जिक्र कर रही है शायद वो मेरी मॉम है। उसके बाद योग ने वापस पेपर खोला और उसे पूरा पढ़ डाला। उसमें कृषा की अब तक की लाइफ की बातें लिखी हुई थी जो कुछ खास नहीं थी। उसे पढ़ने के बाद योग ने उस पेपर का एक बॉल बनाया और फिर डस्टबिन की तरफ निशाना लगाकर फेंक दिया। ये लड़की कितनी बोरिंग है, ना कोई फ्रेंड है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड बना। मुझे तो इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि मैं पहला लड़का हूँ जो इसकी लाइफ में आया हूँ, लेकिन न जाने क्यों खुशी नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे अर्जुन ने इसे अपने हिसाब से रखा है, वो इसका भाई नहीं बाप बन कर रहा है। उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी कृषा का ब्रेन वॉश करने में, युग ने मन में खुद से कहा। उसके बाद वो नीचे आ गया। उसने मलिक को कॉल पर कनेक्ट किया और उसे मीटिंग रूम में आने को कहा। युग ने कृषा से वादा किया था कि वो उसे मीटिंग में अपने साथ लेकर जाएगा। अपने वादे के मुताबिक युग और कृषा मीटिंग में पहुंचे। युग के साथ कृषा को देखकर मलिक को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। मलिक के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझते हुए युग ने कहा, कृषा खुद को हर तरह से तैयार कर रही है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि हम कहीं पर भी जाने से पहले कैसे प्लान करते हैं। कृषा ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर वो लोग वहाँ चेयर पर बैठ गए। मलिक ने प्रोजेक्टर पर एक नक्शा निकाला, फिर उसमें रेड पॉइंट को जूम किया। मलिक ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जगह कर्नाटक के कोलार से लगभग 40 मील दूर है। वहाँ की खानी बंद हो चुकी हैं। माइंस में अभी भी गोल्ड मौजूद है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे गवर्नमेंट ने बंद किया है। अभी भी कई लोगों की उस पर नज़र है। हमारा तीसरा पड़ाव इन्हीं माइंस में छुपा हुआ है। लेकिन माइंस में जाना तो बहुत खतरनाक होता है। मैंने सुना है कि वहाँ पर कदम कदम पर बॉम्ब प्लांट किए होते हैं। ऊपर से ये माइंस तो बंद भी हो चुकी है। इनकी सेफ्टी के लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ होगा जिससे वहाँ लोग ना जा सके। कृषा ने झट से जवाब दिया। योग और मलिक दोनों ने ही नहीं सोचा था कि कृषा इतनी जल्दी सब कुछ समझ जाएगी। उसको देखकर यही लगता था कि वो किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। योग ने कृषा की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा है, ये काम आएगा, इसे सही जगह पर यूज करो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं इन माइंस में नहीं जाऊंगी, क्या पता वापस हम टुकड़ों में लौटें, कृषा ने सिर हिलाकर कहा। कृषा की बात सुनकर मलिक के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। वो हंसना चाहता था, पर युग को देखकर उसने तुरंत खुद के चेहरे के भावों को सख्त कर लिया। फिर मलिक ने कृषा की तरफ देखकर कहा, डेफिनेटली माइंस में बॉम्ब्स हैं। गवर्नमेंट का मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए आपकी फैमिली ने जरूर प्लांट किए हैं। यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं है, और नेगेटिव पॉइंट ये है कि ह्यूमन सिक्योरिटी इसलिए अपॉइंट नहीं की गई है कि वहाँ पर हर कदम पर बॉम्ब रखा हुआ मिल सकता है, और गलती से भी हमने उन पर कदम रख दिया तो हमारे पैर हटाते ही वो ब्लास्ट हो जाएंगे, युग ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा। जब वहाँ इतना खतरा है तो हम जा ही क्यों रहे हैं, बोल देंगे ना हमने सारे पड़ाव पार कर लिए हैं, कौन सा वो लोग वहाँ देखने जाएंगे, कृषा ने अपनी तरफ से बीच का रास्ता निकालते हुए कहा। उसे लगा युग को उसका आइडिया अच्छा लगेगा, लेकिन युग उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रहा था। युग ने कृषा को कुछ नहीं कहा। फिर वो मलिक की तरफ देखकर बोला, हमें माइंस के बॉम्ब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम अपने साथ में बॉम्ब डिटेक्टर लेकर चलेंगे। फिर भी गलती से किसी बॉम्ब पर पैर रख दिया तो हमारे पास एक ऐसा शख्स होगा जो इन सब में एक्सपर्ट है। बोलते हुए युग के फेस पर स्माइल आ गई और उसके दिमाग में रिदांश ओबेरॉय का चेहरा घूम रहा था।
पिछली बार भी युग ने मलिक को रिदांश के बारे में नहीं बताया था। इस बार मौका देखकर मलिक ने फिर पूछा, आपने बताया नहीं वो कौन शख्स है जो हमारी मदद करने वाला है? रिदांश ओबेरॉय। जवाब में युग ने इतना ही कहा। उसके मुंह से रिदांश का नाम सुनकर मलिक भी हैरान था। लेकिन उन्होंने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है? मैंने सुना था कि वो अब वहाँ काम नहीं करते हैं। उन्होंने तो अपना नया बिजनेस शुरू था जो काफी सक्सेसफुल भी है, फिर वो हमारी मदद करने क्यों आएंगे? मलिक ने हैरानी से पूछा। एक बहुत पुरानी कहावत है मलिक, एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की जरूरत में जरूर हाजिर रहता है। मैंने रिदांश को कॉल लगाया और उसने आने के लिए हाँ कह दिया था। तुम कर्नाटक जाने की तैयारी करो, बाकी हम देख लेंगे, युग ने जवाब दिया। वो उठकर जाने को हुआ था, अभी मलिक ने कहा, लेकिन वहाँ बहुत खतरा है, हम तो फिर भी बम से बच सकते हैं, पर मैम इनकी अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है। बोलते हुए मलिक की नज़रें नीची हो गई। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं हूँ, युग ने सर्द आवाज में जवाब दिया और अपनी बात खत्म करके कृषा का हाथ पकड़कर वहाँ से चला गया। आदित्य सिंघानिया युग और कृषा की शादी तोड़ने में लगे थे, जबकि उन्हें खबर तक नहीं थी कि युग इतनी जल्दी तीसरे पड़ाव तक जाने के बारे में सोच भी सकता है। मलिक ने युग के हिसाब से सारी तैयारी करवा दी थी और वो तीनों आज रात ही कर्नाटक के लिए निकल रहे थे। वहीं कर्नाटक के लिए निकलने से पहले युग ने रिदांश को भी इन्फॉर्म कर दिया था। ची